किसी साहब ने सवाल पूछा कि नक्शबंदी शेख क्या होता है। अच्छा सवाल है माशाल्लाह। तो इसका जवाब तो शायद काफी दफा मेरे हाथ में आया है, भैया नक्शबंदी क्या चीज है, इसके मशाइख क्या काम करते हैं, क्या है, क्यों जरूरी है ये। दरअसल बात यह कि नई चीज तो है नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाया तो कुरान जी बताता है कि तीन चीजों के साथ आपने इस दुनिया की तरफ रुजू फरमाया अल्लाह के हुक्म से। जो अल्लम किताब अबुलहकमत वजे हम तीन चीज़ें थी, किताब हिकमत को बुजगान दिन फरमाते हैं कि फिका और तस्किया, ये तीन चीज़ें थी जो आप तशरीफ जो तीन चीज़ें दी उम्मत को, आप किताब का इलम दिया, फिका का इलम दिया और तस्किया का इलम दिया। तीनों की हैसियत जो है बराबर है और तीन अलूम है जो दिए गए और तीनों अलूमों को फैलाया, तीनों के माहिरीन पैदा किए गए और तीनों के इलम जो सबसे पहले नबी करीम ने ताफरमाया ये आपकी जो जमात थी असहाब कलाम की उनको दिया, उनसे फिर तीनों इलम आगे चले। हयत बदलती रही लेकिन बेसिकली इलम वही हैं सारे, लेने का तरीका या तकसीम करने का तरीका या हासिल करने का तरीका, स्टूडेंट बनने का तरीका, ये तो तब्दील होते आ रहे हैं ना। ऐसे तो मदरसे थोड़ी थे, ऐसे कोई चीज़ थोड़ी होती थी, लेकिन बेसिक की जो चीज़ है वही है, वही इलम है। कुरान का पढ़ना सीखना तजवीद ये सारी चीज़ें जो है इलम है। तो इन सब के माहिर अल्लाह ने पैदा फरमाए, कुरान के माहिरीन भी पैदा फरमाए, फिकह के माहिरीन भी पैदा फरमाए, इस तरह तजिया तस्किया के माहिरीन भी पैदा फरमाए ताकि क़यामत तक इन तीनों इलूम को चलाया जाए। तो सबका फिर यह है कि ज़माने के साथ साथ उनके टाइटल लगा दिए गए कि जो कुरान के आलिम होंगे या कुरान के फैलाने वाले होंगे, हाफिज होंगे, कारी होंगे, आलिम होंगे, माशाल्लाह ये सब माहिर कुरान होंगे, मुफस्सरीन कुरान होंगे, मुफस्सर कुरान होंगे। इसी तरह फिका आ गया, फिका में ये सारे जो मामलात हैं हमारे दूसरे दर्जे पर उसके माहिरीन पैदा फरमाए, जिसमें चार बड़े ज़बरदस्त इमाम मालिकी, इमाम शाफी, इमाम हनफी, हम्बली, इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे जिसके हम फॉलो करते हैं, सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म जिनको कहते हैं, इन तीनों ने फिकह का काम किया बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह और फिकह चला सारी किताबों। अब रह गया तस्किया, तो तस्किया भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी इलम था। तो तस्किया के इलम की भी अल्लाह पाक ने इसी तरह पैदा फरमाए लोग। तस्किया क्या होता है कि भाई जो इंसान की बातिन से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, गुनाह बड़े ख़तरनाक हैं, तो इन गुनाहों को सही करने के लिए तदाबीर दी अल्लाह की तरफ से, उनको असकार दिए, इसबाक दिए, तरीके बताए अल्हामी तौर पर। तो इस तरह चार सिलसिले बने, नक्शबंदिया नहीं, पहले कादरिया है, चुश्तिया है, सोहरवर्दिया है और फिर नक्शबंदिया है। इन चार को इसी तरह इमाम पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इनको दिया। तो क्योंकि सिलसिला नक्शबंद से हम करते हैं मामला, तो ये नक्शबंदी सिलसिला जो है ये बुखारा के बुजुर्ग थे बहुत बड़े, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि इनसे अल्लाह पाक जितने जितने बुजुर्ग हैं जिस भी फील्ड पे, जैसे कुरान में हैं उनका आप देखें हिस्ट्री, तो अल्लाह ने पहले उनकी बशारतें दी हैं लोगों में, फिक्री में जिस तरह अबू हनीफा हैं, उनको कितनी बड़ी बड़ी बशारतें मिली हैं। इस सब तस्किया के अंदर जब ये थे तो इनको पहले बड़ी बशारतें दी अल्लाह ने, जिस तरह बहुद्दीन नक्शबंद अभी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो जमाना था, वो अल्लाह वालों का जमाना था और बहुत करीब था नबी पाक उस जमाने से। क्योंकि हज़रत नक्शबंद जो है रहमतुल्लाह अलैह, ये सन 708 में पैदा हुए हिजरी के अंदर, तो आप देख रहे हैं आज तो क्या तारीख, कौन सी हिजरी है, ये बहुत करीब जमाना था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत ही नूरानी जमाना था, अल्लाह वाले बहुत थे। तो बुखारा एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी जगह है, इमाम बुखारी भी वहीं से हैं, आप ये देखें। तो इसी बुखारा में मशहूर था बुजुर्गों के अंदर जो आते थे, इंतकाल फरमाते थे कि एक बुजुर्ग पैदा होगा यहाँ अल्लाह की तरफ से, और ऐसा बुजुर्ग होगा कि पूरे जमाने में उसका नूर फैल जाएगा आफ्ताब का। ये तो वो इंतजार करते थे बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग को बता के जाते थे कि कौन सा है। तो सन जब 708 हिजरी के अंदर हज़रत ख्वाजा नक्शबंद पैदा हुए, सईद खानदान के अंदर पैदा हुए, ये चारों जो है सादात ही में से थे, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी, ख्वाजा नक्शबंद भी, ये भी सोहरवर्दी भी, हज़रत चश्ती रहमतुल्लाह, सब सादात में पैदा हुए। तो ये भी सईद खानदान से पैदा हुए। जब ये पैदा हुए थे, एक बुजुर्ग थे उस जमाने के, तो उन्होंने पूछा उस इलाके में जाकर कि भाई यहाँ कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, जिसकी बशारत लोग करते आए हैं उसकी खुशबू कुछ मुझे सुनाई दे रही है। कैसा जमाना था आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, किस बच्चे की मुझे खुशबू नजर आ रही है, मुझे लगता है वो बच्चा पैदा हुआ है, कुछ एक बच्चा तो पैदा हुआ है, सईद फैमिली है फलाउन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, कहता बच्चा लाओ मैं देखना चाहता हूँ, आपको लेकर है। तो उन्होंने कहा फौरन कि यही वो बच्चा है जिसका इंतजार था, और इससे पूरी दुनिया के अंदर नूर फैलेगा, अल्लाह ताला का नाम फैलेगा। अल्लाह ताला जिसे काम ले, तो बुजुर्ग चुने लोग थे अल्लाह ताला के सारे। तो इस तरीके से फिर ख्वाजा नक्शबंद जो है बुखारा में पैदा हुए, बहुत ही जबरदस्त बुजुर्ग थे, यानी शुरू से ही जस में रहते थे, क्योंकि इसमें ज़ात इनका जिक्र जो था, तो आप देख रहे नक्शबंदी सिलसिला चल रहा है, यानी हाल ये था कि उनकी बड़ी करामात है, बेनतहा बचपन से इनकी करामातें शुरू होती हैं। यानी एक वाक़ ऐसा है उनका कि अभी तो डिक्लेयर नहीं होती कि बुजुर्गी तशरीफ ले जा रहे थे कहीं से, तो सब जानते थे कि भाई ये बड़ा अजीब किस्म का इंसान है, कोई इसको इसकी पता नहीं चलती इसकी कैफियत का। तो उन पर एकदम गलबा हुआ अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रूहानी का, तजलियात का किसी का। तो सामने से कोई शख्स जा रहा था, तो बस उनको नागवार गया कुछ हुआ, तो उसको कहते मर तू, वो उसी वक्त मर गया। कैसे उस लफ्ज ने मर गया बेचारा। तो जब वो अपने कैफे से बाहर निकले, तो देखा वो आदमी तो मरा पड़ा है, दरख्त के नीचे बैठ गया, और बड़े सोचने लगे कि ये मेरे मुंह से क्या लफ्ज निकला अल्लाह ताला। तो कुछ देर के बाद फिर उन पर तजलियात की कैफियत जारी हुई, तो उस पर जब नजर पड़ी आदमी को, उसको बात है जिंदा हो जा, वो आदमी फिर जिंदा हो गया। यानी देखें अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। तो ये तो नबी करीम उम्मत के आदमी हैं, आप क्या दर्जे के लोग हैं सो बताएं, सरकार उम्मत क्या चीज होगी, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने ताकतें दी इस उम्मत में। तो इस किस्म के मतलब उनके हालात थे बहुत, फिर अल्लाह ताला ने उनको तैयार करना था जमाने के लिए, ये सिलसिला इनायत फरमाया अलहमी तौर पर, और ये खास सिलसिले के तरीके पर बयान फरमाए कि इस तरह जो आएगी क़यामत, तो आखिरी बुजुर्ग थे ये, यानी तसव्वुफ के सबसे छोटा सिलसिला है, सबसे एंड में आया है ये। तो मैं क़यामत तक जो है पब्लिक आएगी, हालात चेंज होंगे, तो ये सिलसिला जो हम तुम्हें इनायत फरमा रहे हैं, इसमें क्या काम होगा, खसूसियत इसकी ये होगी, दो खसूसियतें बयान फरमाई सिलसिले की। नंबर एक कि एक सिलसिले के अंदर जो तरक्की सारी जितनी भी होगी इंसान की, जितनी भी तरक्की होंगी, किसी मुजाहदे से नहीं होंगी, किसी चीज़ से नहीं होंगी, बल्कि किससे होंगी, इत्तबाए सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसी वक्त इसी वजह से नक्शबंदी जो लोगों पे सुन्नत का रंग बहुत जल्दी चलता चढ़ जाता है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत बड़ी करामत है ये भी नक्शबंदी सिलसिले की, और सबसे बड़ा रंग है ये सिबगतुल्लाह, यही सबसे बड़ा रंग है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का। तो फरमाया ये दो चीजें होंगी उसमें, ये किसमें बहुत जो तरक्की का रास्ता होगा वो किस पर होगा, इत्तबाए सुन्नत पर। और ये जमाना क्योंकि ऐसे तौर पे चाहेगा, अभी तो देखें कैसे कैसे फितनों के जमाने आएंगे, अजीब अजीब फितनों के जमाने आएंगे। और सबसे बड़ा फितना जो होगा जमाने के अंदर वो ये होगा, दज्जाल तक सब जगह जब आप दज्जाल आएगा और इमाम मेहंदी आएंगे, हज़रत सलाम आएंगे, जूज मजूज निकलेंगे, तो बड़ी हिस्ट्री है इनकी। तो एक ही चीज के दुश्मन होंगे, वो क्या होगा कि वो नबी होंगे सुन्नत से नफरत करेंगे, सुन्नत को पसंद नहीं करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तब इमाम मेहंदी जब आएंगे तो वो कोई नया दीन लेकर नहीं आएंगे, बल्कि क्या आया है, सुन्नत करेंगे। उनकी जमात के जितने लोग होंगे ना वो सुन्नत वाले होंगे सारे। ये सबसे बड़ी निशानी आप देख लें, सबसे बड़ी निशानी कि उस वक्त क्योंकि बिल्कुल वहां तो कोई ड्रामा खत्म हो जाएंगे जी, इमाम मेहंदी जब आ गए फिर तो ये नहीं होगा ये हक है ये सच है, कोई बताने के लिए तकीरें करनी पड़ेंगी, कोई दलीलें देनी पड़ेंगी, नहीं नहीं ये झूठ बोलना है, नहीं भाई ये जमात बड़ी सही है, जमात सही है, वो तो सारा पानी या दूध अलग हो जाएगा। फिर तो इमाम मेहंदी कह देंगे बस ये जो सच है खत्म, वो सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे, ये फलां झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं इससे हम वो फलां, अब जैसा आप देख रहे हैं तमाशे, हर आदमी दावा यही करता है भी मैं सही हूँ मैं सही हूँ, तो फिर आप सामने सारी बातें खुल जाएंगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक ही चीज़ सच होगी, वो कौन होगी, इत्तबाए सुन्नत सच होगी, सब खत्म हो जाएंगे मामला। तो ये रंग जो है नक्शबंदी सिलसिले के अंदर है। और दूसरी चीज़ जो खासियत ये दी इस सिलसिले के अंदर, मुजाहिदा नहीं है, तो ये नहीं कि बच्चों को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो, घर बैठ जाओ, बस सुबह वजीफे करो शाम को वजीफे करो और जनाब अल्लाह अपने काम काज ना करो, चाहे दुनिया के साथ मत चलो, तरक्की मत करो, इस सिलसिले में ये काम नहीं है। बाकी सिलसिले में तो ये होते थे मुजाहिदे बड़े जंगलों में निकल गए, उधर नहीं जंगल में निकले बीवी बच्चों में उनके हक अदा करो, घर वालों का हक अदा करो, माशरे का हक अदा करो, उनको भी देखो, खुद भी टाइम लगाओ, ये नहीं कि भाई हर वक्त जो है, और कभी भी यानी मैं खुद बता रहा हूँ, खुद मेरे हजरत का मुक्तबात में तहदीर है, बड़ी सख्ती से जबान भी फरमाया खत्म तखीर करते थे, खबरदार याद रखना मुझे काम क्या करते हो, मैं कह फलना मैं तो जाहिर है सो पढ़ता था, मैं जॉब होगी मेरी अच्छी खासी जॉब थी, तो कहने लगे कि ठीक है जो कुछ भी है दो चीज़ों ख्याल रखना, जो करो हलाल हो, और दूसरी चीज क्या है कि कभी ऐसा ना पीर ना बनना, हर सांस जब तक हो हाथ से कमा कर खाना, फरमाते थे दुकान हो कारोबार हो कुछ हो कभी भी खबरदार जो किसी किस्म के मुफ्ता मारने की कोशिश की, यहाँ तो मुफ्ते बहुत ज़बरदस्त है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हजरत का सदका जिंदगी भर कभी मैंने इस तरफ तो जान ही नहीं गया कि भी ये क्लेम कर लें फला क्लेम कर लें, अल्लाह का बड़ा करा अभी तक तो बचाया उसका सदका हज बुजुर्गों की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है ना भी ये क्लेम कर लो फला क्लेम कर लो मकान का, होते चांसेस तो आते ही रहते हैं इंसान की जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इतनी ताकत आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई यहाँ तक हुआ कि जिंदगी में ये बुजुर्ग देखें, क्योंकि नक्शबंदी की खासियत है ना ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि भाई घर बैठ जाए पीर बन जाए तो भाई चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं और फलां आने शुरू होते हैं मुफ्त खुल जाता है, कहते हैं नहीं कभी नहीं, हाथ से काम करना है। तो फिर इस आजिज ने यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फैक्ट्री में जाके झाड़ू तक दीम, अगर नहीं हजरत का हुक्म था मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, मैं एक दिन भी कलेम नहीं करूँगा, बेशक मेरी रात को जाके झाड़ू देने पड़े चीज़ें साफ करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन मैं जो है खाली नहीं बैठ सकता। तो इस सिलसिले के अंदर ये बहुत अच्छा है दो चीज दी, कितनी सुन्नत के नज़दीक आप ये देखें भाई, ये कोई बहुत बड़ी काम तो नहीं है, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया तबलीग करने के लिए तो फिर आप बस दूसरी जगह से पैसे कमाना शुरू कर दें, हम तो अल्लाह का काम कर रहे हैं, ये क्या बात, ये बहुत बड़ा धोखा है ना, हम तो अल्लाह का काम कर रहे हैं, यहाँ से क्लेम कर लें वहाँ से क्लेम कर लें, अल्लाह को जो काम कर रहे हैं हम ये फलां कर रहे हैं, नहीं अल्लाह बुजुर्ग जो गुजरे हैं असल बुजुर्ग उनसे पूछें कि तसव्वुफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हलाल कमाई है, जिसके हलाल है एक पैसा अंदर हराम को चला जाता है इंसान के लिए इबादतें खत्म हो जाती हैं, इंसान नूर खत्म हो जाता है, याद रख नूर खत्म हो जाता है, ये डकोसले से नहीं चलते। तो ये तो नक्शबंदी सिलसिला बड़ा प्योर सिलसिला है, बहुत प्योर। तो तो इसमें क्या है, तभी ये हुक्म दिया गया, मशायख को हुक्म दिया गया तुम गद्दियों में मत बैठो, बल्कि क्या करो, काम करो अपना जो कुछ भी करना है। तो इसमें क्या है सच में, दूसरी चीज क्या है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कमाल की चीज है कि मुझे हैदात नहीं है, आम 5 वक्त की नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते हैं, रोजे रख लिए आज कर लिए बस, और कोई है कोई चीज बता मुझे, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहते। लेकिन बाकी दूसरे जाए तो कहते हैं इतने हजार ये, इतना हजार वो, इतनी तस्वीरियात अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसमें एक कमाल क्या रखा अल्लाह पाक ने कि औरों को इतने मेहनत के बाद जो मिलता है वो तुम्हें 1 सेकंड में मिल जाएगा। यानी तुम्हारी जो इब्तदा होगी नक्शबंदी की वो उनकी इंतहा होगी। वो कैसे कि जितने चाहे वजायफ कर लें, उसके मुकाबले में नक्शबंदी से लिखो वजीफा दिया है वो इतना बड़ा वजीफा है कि दिल के अंदर बैठ के एक दफा अल्लाह कह दो बस खत्म, सब वजीफों से बढ़ जाता है। कितना आसान है, ये तुम्हें कहता हूं राखबा किया को नहीं जी, और कोई तस्वीर बताया जी, खुद मुश्किल मांग ताकि बंदे खुद इतना आसान कर दी है कि सारे अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाइफ़ों को उड़ा के रख देता है क्लब के अंदर बैठ के आदमी पूरे इत्मीनान के साथ, बस 3 मिनट भी एक दफा अल्लाह अल्लाह 3 दफा भी दिन में कर ले, सिर्फ 3 सिर्फ नहीं है, इसकी भी आदत डाले, ये 3 दफा बैठ के मुलाकात में आदमी अल्लाह 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 कर ले सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम। तो ये अल्लाह की तरफ से अतिये दिए गए, मतलब ये बता रहा हूं ये सिस्टम अल्लाह की तरफ से आया ना हमारे साइज के लिए, अल्लाह को पता है वोल्टर में लोग होंगे, कारोबार करना पड़ेगा, टैक्सी चलानी पड़ेगी, कुछ करेगा, इतनी बिजी लाइफ है, नमाज मुश्किल हो जाती है आदमी के लिए, हो जाती है ना। तो मैं ये डिस्टर्ब नहीं करना है, कारोबार चलता रहे, इकोनॉमी चलती रहे, लेकिन जहां नमाज करना है वो फिर जमात से नमाज पढ़ो, इधर नहीं भागना, छोड़ दो हर चीज में, वो मस्जिद में जाओ। इसीलिए अल्लाह पाक ने देखें कितनी मस्जिदें बनाई हुई हैं, कोई भाड़ा नहीं चल सकता, फर्ज को यहाँ काम करते हैं आपके टाउन के अंदर, मस्जिद बनी ना बनी देख लिया, कितनी दूर है टाउन यहाँ से भाई, गाड़ी तो 3 मिनट लगते हैं फिर, अच्छा कार पार्क भी यहाँ पर है, कोई बहाना नहीं कि आप जमात से क्यों नहीं पढ़ रहे। अब ये बहाना कि घाक चले जाएंगे, ये इंसान की आजमाइश है। लातल हुक्म वालकुम औलादुकुम ज़िक्रुल्लाह, कुरान कहते हैं कि ये माल दौलत जो है मेरे दीन में ये नहीं है, जब मेरा हुक्म आ जाए उस वक्त तो तुम्हें आना है, एक्स्ट्रा में तुम्हें बुलाया ही नहीं रहा, बस 5 मिनट मुझे दे दें आप, चाहे जो काम करते फिर आप जितना कमाए जितने ग्राहक आए उसमें डिस्टर्ब थोड़ी करेगा मैं, अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए नक्शबंदी को काम ये दे दिया कि दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह करता रहे खड़ा हो। ये नक्शबंदी कमाल है, ना किसी तस्वीर की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत, वहां भी मस्जिद में खड़ा है अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। तो ये दिया हस्त बहाउद्दीन नक्शबंद को, अब क्या है कि ये सिलसिला चला वहां से, तो अब ये सिलसिला चला, उन्होंने सवाल ये था कि नक्शबंदी शेख क्या होता है, शेख इंसान होता है ना जीन होता है ना फरिश्ता होता है, वो इंसान शेख कैसे बनता है, शेख कैसे बनता है कि जी सब ख्वाजा नक्शबंद थे उन्होंने आगे टीच किया लोगों को, शागिर्द बनाए, इल्म हासिल किया उन्होंने, हासिल किया उनमें से, जिसको उन्होंने शेख सेलेक्ट नहीं करता किसको, अल्लाह सेलेक्ट करता है, याद रखें अल्लाह सेलेक्ट करता है उसमें से, उसमें उन लोगों को अल्लाह ने सेलेक्ट किया कि आगे जाके काम करें, फिर उन्होंने आगे काम किया, फिर अल्लाह ने उनमें से सिलेक्ट किया, जैसे ये ग्रुप है ना हमारा, अब इसमें से कौन सिलेक्ट करेगा, अल्लाह सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करके किधर हल्का करेगा, शेख के सीने में हल्का करेगा कि इसको तुम इजाजत दो कि जाके काम करो, उसको कहते हैं खिलाफ इजाजत देना। तो इतना फर्क पड़ जाता है, जैसे स्टार्ट यही से ना कि अल्लाह ने इजाजत दिया तो ख्वाश न करो, तो इसी तरह शेख मजमे से अल्लाह हल्का कर देता उस पर, अब कोई क्या तारीफ है उसकी हम नहीं जानते, वो तो अल्लाह के नजदीक ही ना, क्यों पसंद किया जा रहा है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या जानने वाला है, हम इसमें कोई हद नहीं कायम कर सकते, बहुत मुजाहिदा करने वाला है, बहुत कुरान पढ़ने वाला है, ये बहुत हिम्मत करने वाला है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि किस क्वालिटी पे किस इंसान को सिलेक्ट किया जाता है। शेख का काम तो इतला देना, वो तो उसके लिए तो जैसे औलाद नहीं होती, भाई सारी औलाद आदमी के नजदीक तो जैसे आप मेरे 10 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10 बच्चे मुझे प्यार होंगे, ये नहीं 10 हो गए तो क्या, 10 क्या प्यार करना, अल्लाह नजदीक उस आदमी से 10 से 10 से प्यार होगा, बराबर प्यार होगा, एक को अगर बुखार हो गया 10 वाले को तो वैसे ही परेशान होगा जैसे नंबर 1 को बुखार होता है, خون کا کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ کا. تو ایسی طرح شیخ کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو ہر مرید سے پیار ہوتا ہے, چاہے پہلے آنے والا ہو یا بعد میں آنے والا ہو. یاد رکھے, جس طرح بڑے کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھنا, یہ بھی سننا, میرے حضرت نے یہ مجھے خود فرمایا تھا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ تمہارے مرید اللہ تمہیں مرید بھیجے گا, یہ مرید بھی اللہ ہی بھیجتا ہے, بگاتا بھی اللہ ہے, بھیجتا بھی اللہ ہے, کسی کی زبردستی ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ یہ بزنس چل رہا ہے, یہ معاملہ یہ سارا اللہ کے حساب سے چلتا ہے. آپ کو مجھے ان کو بٹھائیں گے, اب آپ کیا ہے, آپ آتے رہیں گے نہیں, لیکن جب اللہ کو جوڑنا ہوگا آپ کے دل میں خود بخود کشش پیدا کر دے گا اس انسان کی طرف. جب یہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ نبی جا کر مومنات, یہ آ رہے ہیں میں بھیج رہا ہوں تیرے پاس, یعنی 100 آدمی بیٹھنے سے ہم 3 آئیں گے. جی آپ اب تو آج کل میں باہر نکل رہا ہوں, کافی جاتا ہوں تو میں تماشے دیکھتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے, 50 آدمی بیٹھے ہو تو 4 خود بخود آ جاتے ہیں, وہ 50 میں اور کوئی نہیں آ رہا. تو اس میں ایک کمال یہ دیا ہے, شیخ کو کوئی نعرے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے, تو قرآن پڑھ کے ان کو سنا دے, جو قرآن ہم نے دیا ان کو سنا, تو باقی ماننا نہ ماننا تو اس کو چھوڑ دے, اس میں پریشان کیوں ہوتا ہے تو. سبحان اللہ, بالکل فکر مند نہ ہو کہ میری بات کیوں نہیں سنتے, کیوں چلے گئے ہیں, کیوں نہیں آتے میرے پاس, ذکر کیوں نہیں کرتے, تیرا سے کام ہی نہیں ہے. تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ شیخ کو بتا دیا گیا تجھے سے فکر نہیں ہے, تو اللہ کا نام پہ جا کے تبلیغ کر, جس نے آنا ہوگا خود کھینچتا تیری طرف آ جائے گا, یہ ہمارا کرم ہوگا اس بندے پر. اور جس کا ہم دیکھیں گے یہ اس قابل نہیں ہے, ہم اس کے دل کو ختم کر دیں گے, اس کے طرف سے رجحان ہی ہٹا دیں گے, اس سے محبت نکال دیں گے, اس کا دل ہی ختم کر دیں گے, اس طرف جائے گا نہیں. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, واللہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ شیخ چاہتا ہے اس کو عجیب چیزیں دیکھنے لگتا ہے, شیخ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے میں اس کو, اور وہ شخص نہیں آ سکتا. ہزاروں کو کوشش کرنے بعد, اور بعض کو شیخ پسند نہیں کرتا, وہ اس کی جانے جہاں بن جاتا ہے. عجیب چیز یہ دیکھ, کیونکہ انتخاب کس کا ہے, رب کا ہے. چننا تو ہم نے رب سے ہی, انسانوں تھوڑے چننا ہے, انسان تھوڑے رب سے جڑنا ہے, جو رب سے جڑ گیا وہ کام بن گیا اس کا, الحمد للہ. کتنی بڑی بات ہے, ابھی کیسا کرنٹ سلسلہ ہے الحمد للہ. کہتے ہیں بزرگ جو اس سلسلے سے محروم ہو گیا حقیقت میں ہر چیز سے محروم ہو گیا, جو ٹھوکر پڑ گئی اس کو اللہ کی طرف سے, محرومی بہت بڑی چیز ہے سلسلے کے اندر. کیونکہ دیکھیں حکم شیخ کو تو نے محبت کرنی ہے, شیخ تو نہیں نکالتا کسی کو. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. غصہ پیتا رہتا ہے سب کو, نکالتا نہیں ہے. جیسے اپنے اولاد کو آپ نے دیکھے نا, حکم ہے یہ تو علماء کرام آپ کو بتائیں کہ جائیداد سے آپ آنکھ نہیں کر سکتے, بے شک آپ کو کے نزدیک کتنی نافرمان ہو لیکن جائیداد میں حصہ موجود ہے اس کا, ایسے ہی نا بھائی علماء کرام بتائیں گے, ہے یا نہیں. باقی اسی سے شیخ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے آدمی ہو, تیری اولاد ہے, روز قیامت میں تیرے ساتھ ہی چپکے ہوں گے سارے ہی اولاد. تو ان کے دلوں میں جو سچے مرید ہوتے ہیں, اتنی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ ڈال دیتا ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں, اس سے ماں باپ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں بعض مشائخ سے, یہ کیا جادو کر دیا, ہماری بات نہیں سنتا, اس کی بات سن لیتا ہے, تجھے کیا اس سے تعلق, بات تو بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ, وہ نہیں سنتا. اگر میرے شیخ کہہ رہے تو میں سنوں گا, کیوں, یہ کون دیتا ہے محبت, اس لیے کہ یہ ایسی محبت ہے, ماں باپ کی محبت تو ختم ہو جاتی ہے, ایک جھٹکا پڑے گا روز حشر میں کون دیکھے گا, باپ آئے گا بھاگے گا بیٹے کو دیکھ کے کہ نیکی نہ دینی پڑ جائے, بیٹا تو ایسی بھاگتا ہے دنیا میں بھاگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے پیسے نہ دینے پڑے باپ کو, پھر مجھ سے پیسے دنیا بھاگنا شروع ہوتا ہے تو آخر تک کیا بات ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا, سبحان اللہ, ہاں شیخ کا جھنڈا ہوگا, مرید اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. عجیب بات ہے. تو بخشی کے سوال اللہ پاک یہاں کیوں, خود اتنی بڑی حدیث ہے, اتنی بڑی حدیث ہے کہ جو میری وجہ سے محبت کرے گا کسی سے, روز قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا وہ, بے شک اس کے اعمال اس کے برابر نہ ہوں, ویسی تہجد نہ پڑھتا ہو, اتنا ذکر نہ کرتا ہو, اتنی عبادت نہ کرتا ہو, لیکن اس نے محبت رکھی ہے میرے ایک بندے کے ساتھ, خالص میرے لیے, اور وہ محبت رکھی اس لیے کہ میں نے دی تھی, اس کی قدر کی اس نے. سبحان اللہ, محبت تو اللہ نے دی تھی, اس نے قدر کی اس محبت کی, میں نے پہلے ڈال دی تھی اس کے دل میں, سب کچھ تھا, لیکن اس نے شیطان نفس کی وجہ سے اس محبت پہ اس کو چھوڑا اور ختم کیا, تو اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اور اس آدمی کو جو سنوار کے رکھتا ہے, بدماشی کرتا رہتا ہے, کچھ کرتا ہے لیکن محبت قائم کرتے سے ہو جاتی ہے نا محبت, شرماتا بھی ہے, یہ بھی کرتا ہے لیکن شیخ کو نہیں چھوڑتا, چپکا ہی رہتا ہے. تو یہ کمال اس چیز کا, جتنے بخشش کا ذریعہ دنیا سے مل جاتا تو ہم شیخ کیسے بنتے ہیں؟ اس طرح پر بڑا تیز کرتے رہتے, بڑھتا رہا ٹرین کرتے رہتے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر شیخ نے اجازت نہیں دیے, کیوں اس میں لطف پیر بننے کا شوق تو پھر نفس و شیطان چلتے ہیں, کہتے یار میں بھی پیر بن جاؤں, آج میں نے وہاں جانا ہے, چلے پاکستان جانا ہے, جاتے ہیں لوگ بہت سے سوال بھی کرتے ہیں, جہاں کسی کو کیا پتا میں یہاں ڈیرے لوا دیتا ہوں. سبحان اللہ, دیکھا تو اس نے طریقہ, اس میں چادر اوڑی بیٹھ گیا, دیر لگتا ہے پیر بنتے, طریقہ تو پتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں, جھوڑا کام کرو بھائی, چادر اوڑی بیٹھ گیا. کون کسی نام تو لے دی, میرے شیخ بلائیں جی, سلسلہ سب کچھ یاد ہے, ہوتا تو مجید ہے, بےچارے لوگ سادے آ جاتے. تو یہ بالکل ایسا اتنی بڑی سخت سزا ہے اس کی کہ جیسے جھوٹا نبی ہوتا ہے نا, وہ سزا اس کو دی جائے گی آخر میں, اتنی بڑی سزا. کیوں نفس آ رہا نا میں بنوں شیخ, میں بنوں پیر, کوئی نہیں بن سکتا. مجھے اس نے اگر یہ کام شروع کیا, بیعت کرنا شروع کر دی اور بغیر اجازت کے لوگوں کو پڑھانا ذکر شروع کر دیا, اور دل اس کا کر رہا ہے اور نفس یہ کہہ رہا ہے دین کا کام کروں, یہ دین کا تبلیغ کیسی ہے ہی نہیں, یہ تو باعث نے اللہ چلتی ہے یار, باعث نے اللہ چلتی ہے. بہت سے وہ لوگ جو نہیں کرتے چاہتے یہ کام, ان کو حکم آ جاتا ہے کہ تم جا کے کام کرنا ہے, اور بہت شرماتے ہیں بےچارے, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا, کہ یار میں کیسے کروں, بس ہو گیا اللہ کا انتخاب. اور جب وہ جا کے بیٹھتے ہیں ان کو تو کچھ بولنا بھی نہیں آتا, کچھ سمجھ نہیں ہوتی, ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی بیٹھتے ہیں کیونکہ اللہ نے نور ڈال دیتا ہے, ہزاروں لوگ ان کے پیچھے کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو خلیفہ بنتے ہیں, جو شیخ بنتے ہیں, اس میں نقش بندی شیخ یہ سوال تھا, یہ بھی بنائے جاتے ہیں, خود نہیں بن سکتا کوئی. کوئی کہہ جی میں ذکر اتنا کرتا رہا, آخر ایک دن تو میں نے پیر بن ہی جانا ہے. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے پاس ایک آتا تھا اسی قسم کا, مجھے کہنا کہ جی میں آپ کی دعوت کروں گا, حضرت صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے یار کس وجہ سے کہ حضرت صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, میری سفارش کر دیں مجھے خلافت دیتے ہیں. 80 سالوں کے اس کو بیٹھے ہوئے, 80 ایئرس, اور بہت خدمت کرتا تھا. کہتے ہیں فاروق صاحب آپ تو بہت محبت کرتے ہیں حضرت صاحب آپ سے, میں آپ کی بہت بڑی دعوت کروں گا, آپ حضرت سے کہہ دیں مجھے خلافت دے دیں. دیکھیں شیطان کس طرح نقل کرتے ہیں, نہیں مجھ جیسے ناکار کو اسی وقت مل گئے, کوئی انتخاب پتہ ہی نہیں انسان کو, سمجھ نہیں تھی, عقل نہیں تھی. تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں شیخ, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام وہی ہوتا ہے جو پہلا کام ہے, سبحان اللہ, کام تو وہی ہے جو نبی پاک نے تبلیغ کی, وہی تبلیغ اس نے کرتی ہے, سنت کو زندہ کرنا, قرآن پہ بات کرنا, حدیثوں پہ بات کرنا, لوگوں کو دین پہنچانا, اللہ کا ذکر دینا, اور اس زمانے کے مطابق الحمدللہ برائیوں کو ان کے سینے سے نکالنا, وہ جو اس میں ٹیکسٹ ہیں طریقوں کے اندر جو سکھائے جاتے ہیں, بتایا جاتے ہیں علم سے, اس سے ان کے اندر کو صاف کرنا, اچھے مخلص لوگوں کو محنت کرنا, یہ کام ہے شیخ کا, اس کا کرنا. تو اس میں شیخ کا درجہ, اب دیکھیں 2-3-4 شیخ ہیں, لیکن یہ بھی یار ہر شیخ برابر نہیں ہوتا, سبحان اللہ, نا ہر شیخ کام سب کر رہے ہوں گے اپنے اپنے مقام پر, اپنے جگہ پر کر رہے ہیں کام, لیکن اس میں سے بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ بعض شیخ بہت ہی بلند ہوتے ہیں, آپ نہیں جان سکتے کہ ان کے کتنے رتبے ہوتے ہیں اور کتنے بلند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بھی تو پیر ہے, یہ بھی پیر ہے, ہم اس سے ہو جاتے ہیں بیعت, ان کو یہ آنکھوں کے اندھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کس کا کیا مقام. اللہ پاک بس جہاں جس کے پاس دیا ہے آپ کو رکھا ہے, چپ کر کے آدمی وہیں بیٹھ جائے, بس یہ نقطہ یاد رکھنا, چپ کر کے آدمی وہیں بیٹھ جائے. ایک تم نہیں جانتے اس شیخ کا مقام کیا ہے, اللہ اگر دکھا دے اس کا مقام تو مخلوق پاگل ہی ہو جائے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص تھے, اللہ ان کو درجات بن کے, وہ خاص خادم تھے, بڑا اچھا انداز ہوتا تھا, بڑے عجیب بات خادم عجیب ہوتے ہیں, ہم تو خیر نزدیک میں جاتے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, وہ کیا جاتے سیدھے آتے تھے, آنے کے بعد حضرت نزدیک آ گئے, کسی کو ضرورت نہیں, اینک اتارتے تھے حضرت کی, تو ان کی حضرت کے اینک ہمیشہ جو ظاہر ہے آنسو نکلتے رہتے تھے, وہ گدری رہتی تھی اینک, تو اتارتے تھے دھو کے صاف کر کے خود ہی اپنے آنکھوں سے, اتنا مزہ آتا تھا نا, خود ان کو پھر اینک پہنا دیتے تھے, عجیب خدمت تھی ان کی. تو میں نے ان کو دوست بنا لیا, کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں فاروق صاحب, میں کہاں بتائیں, کہتے ایک دفعہ میں نے سوچا کہ یار یہ حضرت کا رتبہ کیا ہوگا, किस किस मुकाम बुलंद पता ही चलता है, इनकी करामत नजर आती है ना, कुछ चीज नजर आती है। इतने सादा आदमी देखे नहीं, लेकिन आदमी छोटा नहीं है ये। इतना मैं कहता हूँ है छोटा नहीं, जो देखा जाता है इसको तो अल्लाह ही मालिक है। मैंने सोचा अल्लाह इसका मुकाम को, आखिर वो भी अल्लाह का वली आदमी था, बहुत बहुत जल्दी इंतकाल करके बेचारे। जैसे हजरत का इंतकाल हुआ ना, बस मैं एक महीना जिंदा रहूँ वो भी खत्म हो गए। हाँ इतनी मोहब्बत थी। तो कहता हुआ क्या जी, फिर मैं जाके लेट गया, तहजुद में लेटा तो एकदम हजरत साहब तशरीफ ले आए। कहने तू मेरा मुकाम जानना चाहता है? कहता हजरत मेरा हाथ मकान दिल तो करता है मैं देखूँ आप कौन है। कहता सुन मैं तुझे अपना मुकाम दिखाता हूँ। ऐसे करके किया, थूका दो पूरा जमीन आसमान जो था ना वो नूर से भर गया। कहते ये मेरा मुकाम है। तो भाई अल्लाह की रात में जो इंसान फना हो जाता है, जो अल्लाह को हो जाता है, पूरी कायनात उसकी हो जाती है, पूरी कायनात उसकी हो जाती है। तो ये है भाई शेख नक्शबंदी, जिसने सवाल पूछा था अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता चल गया होगा। तो अल्लाह पाक हमें सिलसिले में कायम रखे, और जो कुछ हमारे से गलती होंगी अल्लाह माफ़ करते रहेगा। बस टूटी फूटी मेहनत करते रहा करें, जिक्र को ना छोड़ें, जिक्र करते रहें, सुन्नत पे चलते रहें, हलाल लेने की कोशिश करें, अपने शेख से मोहब्बत रखें, तरीके से मोहब्बत रखें। और गलती हो जाती है आदमी का, ये तो फरिश्ता तो आदमी कोई नहीं हो सकता ना, सुस्ती भी हो जाती है। बस ये है कि जमा रहा है आदमी, बस ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एक तरीका मिल गया है, बख्शिश भी इससे हमारी होगी, इसी तरीके हमें आखिरत में उठना है, ये सब कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बशारत यह है, मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत मुझे समझ रहमतुल्लाह आपने कितने बड़े आदमी, उनकी मकतूबात में लिखी है कि इमाम मेहंदी जो आएंगे, तो जब जिस जमाने में वो आएंगे तो उस जमाने में जो सबसे बड़ा शेख होगा नक्शबंदी, उसी के साथ उनकी दोस्ती होगी, वहां उससे दोस्ती होगी। नक्शबंदी सिलसिले सुनते शीशे थे ना, मुलाकात सबसे पहले वहीं होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, उनकी जमात पूरी होगी जो इस काम करेगी, दीन को फैलाएंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है कि मुझे भी आपको भी, सभी डब्बे हैं, मैं तो आपसे बड़ा डब्बा बैठूँ, डब्बे समझते हैं कुछ भी नहीं था जिसके। तो बस अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, तो जो बेचारे अभी इस सिलसिले में नहीं है, कम से कम अल्लाह का जिक्र सीखें, बताया करें लोगों को, इस नस्बत ही रख लें आप किसी शेख से, नस्बत रख लें बहुत बड़ी चीज़ है। हाथ पकड़ के कहते हैं हमें नस्बत ही दे दें आप, ताकि हम सिलसिले जुड़ तो जाएँ, कम से कम जुड़ जाना ही बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी बरकत। जिस तरह टूट जाना बहुत बड़ी महरूमी है ना, इस तरह इसके साथ जुड़ जाना भी बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी बरकत है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसमें अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें, कितनी बरकतें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां, दीन और दुनिया के अल्लाह ताला खत्म कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।